अब इसके अंदर प्रत्यक्ष सदगुरु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वापस ऊपर भी किया था अब भी वही कर रहे हैं, ये गुरु की बातें अब चलती रहेंगी, नेक्स्ट 6-7 श्लोक तक यही चलेगा। गाते हैं इसको।
आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगी
श्लोक कई बार मतलब नॉर्मली भी लोग गाते हैं, आनंद की अनुभूति करने के लिए गाते हैं, इस श्लोक का मंत्र के रूप में भी यूज़ करते हैं हम लोग, इवन जो आदिशक्ति माँ की आरती गाते हैं उसमें भी लास्ट में ये श्लोक यूज़ करते हैं, आनंद मानंद करम। तो बहुत ही वाइडली यूज्ड श्लोक है ये। क्या कहते हैं गुरु का स्वरूप कैसा है? आनंद मानंद करम, जो मात्र आनंद और आनंद में रमण कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं मात्र और मात्र, ये आनंद डजंट मीन कि वो लाफ कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया ना सत्संग में कि आनंद की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, आनंद डजंट मीन कि वो हमेशा लाफ कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आनंद एक बहुत ही अलग घटना है। ब्लिस हैज़ वेरियस नेम्स, ऐसा करके कोई वीडियो शायद है भी हमारा, उसके 23-25 जितने ब्लिस के, आनंद मतलब ब्लिस, आनंद इज़ नॉट हैप्पीनेस, आनंद इज़ नॉट प्लेजर, आनंद इज़ नॉट जॉय, आनंद इज ब्लिस। और उस ब्लिस के लगभग 25 नाम हम लोगों ने किए थे, तो उसका एक पूरा वीडियो बना हुआ है कि ब्लिस हैज सेवरल नेम्स, तो कभी देखना। तो सदगुरु उसमें होते हैं। ये आनंद वर्ड से कहीं ये मत समझ लेना वो हमेशा लाफ कर रहे हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं होता। वो भी गंभीर हो जाते हैं, उनको भी दुख लग सकता है, लेकिन स्टिल द स्टेट ऑफ आनंद इज ऑलवेज देयर। तो जो मात्र आनंद और आनंद में रमण कर रहे हैं, प्रसन्नम, जिनका आनंद उनकी प्रसन्नता से झलकता है, अगेन प्रसन्नता डजंट मीन वो हंसते रहते हैं पूरा दिन, प्रसन्न है, आकुलता व्याकुलता में नहीं दिखेंगे। ज्ञान स्वरूपम, जो अपने ज्ञान स्वरूप में रमण करते हैं यानी साक्षी है। निज बोध रूपम, जो निज बोध से भरे हुए हैं, अपने स्वरूप के बोध से भरे हैं, अपने दोषों के भी बोध से भरे हुए हैं, अपने विचारों के भी बोध से भरे हैं, यानी हमेशा वो जागृत है, अवेयर है, उनको सब ख्याल है। योगींद्र मियम, यानी योगी यानी साधक जन उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, इंद्र मानते हैं। योगींद्र में इंद्र वर्ड आ रहा है ना, योगी प्लस इंद्र, यानी योगी जन साधक जन उन्हें अपना इंद्र यानी इष्ट मानते हैं। भव रोग वैद्यम, क्यों इष्ट मानते हैं? क्योंकि वो भव रोग को हटाते हैं, उसको क्योर करते हैं। ऐसे श्रीमद गुरुम, यानी श्रीमद और गुरुम वर्ड को एक बार यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। श्रीमद गुरुम ईश्वरीय आध्यात्मिक लक्ष्मी से जो संपन्न है, श्री यानी लक्ष्मी और मद यानी महत यानी ईश्वरीय, जो ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है वो श्रीमद गुरु है। ये श्रीमद वर्ड अब बार बार आएगा, सो एक जगह इसको क्लियर कर दिया है। नित्य महम, यानी सदा मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। भावार्थ क्या बनता है? प्रत्यक्ष सतगुरु के स्वरूप की स्तुति करते हुए उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो सदा आनंद में मग्न है, जिनमें से प्रसन्नता झलकती है, जो साक्षी रहते हैं क्योंकि स्वरूप के अनुभव से भरे हुए हैं। सदगुरु को साधक जीव अपना इष्ट मानते हैं क्योंकि वह भव भ्रमण के रोग को हरते हैं। ऐसे सदगुरु आध्यात्मिक लक्ष्मी से संपन्न हैं और मैं स्वरूप समझकर उन्हें सदा नमस्कार करता हूँ। स्वरूप को समझकर, उनका स्वरूप क्या है। अब ऐसे सदगुरु की हमारे चित्त में किस प्रकार से रमणता होनी चाहिए? रमणता मतलब वो किस किस तरह से हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारी मेमोरीज में, हमारी सोच में वो होने चाहिए, वो यहाँ 4 मेजर शब्दों के माध्यम से बताया। गुरु तो मिल गए, ऊपर का 10th और 11th श्लोक में तो स्वरूप बताया, लेकिन वो हमारे चित्त में कैसे मौजूद होने चाहिए? खाली हम जितनी देर उनके समागम में उतनी देर ठीक है, फिर बाद में क्या होना चाहिए? तो बाद में क्या होना चाहिए वो 4 बातें इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं। क्या कहते हैं?
श्रीमद् परब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमद् परब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमद् परब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमद् परब्रह्म
अभी श्रीमद परब्रह्म गुरु जो वर्ड है, ये सारे अगेन गुरु गीता के श्लोक हैं, तो ये कृपाणुदेव का श्रीमद नहीं है, ये जस्ट श्रीमद है। ये याद रखना कि हमें लगे हम श्रीमद श्रीमद बोल रहे हैं तो श्रीमद राजचंद्र की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है हमारे लिए श्रीमद राजचंद्र हो गए, तुम्हारे लिए हो सकता है श्रीमद तुम मेरे रूप में देखो, कोई और किसी को गुरु मानता है और वो कभी हमारे यहाँ आए और ये स्तुति कर रहा है तो उसे श्रीमद में अपने गुरु देखने चाहिए, ठीक है, वो उससे रिलेट करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, श्रीमद यानी ईश्वरीय लक्ष्मी से संपन्न, श्री यानी लक्ष्मी और मत यानी ईश्वरीय लक्ष्मी उससे जो भरा हुआ है, परब्रह्म गुरु ब्रह्म से परे श्री सदगुरु अर्थात ईश्वर सत्ता में एकाकार। देखो ब्रह्म जो है वो पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप ले चुका है, यस, जो बिग बैंग हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड का स्वरूप लिया, तो ईश्वर जो है वो पर ब्रह्म से भी परे है, ये हमेशा याद रखना। ऑल्दो हम परब्रह्म को भी ईश्वर कह देते हैं, हम तो सभी को ईश्वर कह देते हैं क्योंकि है, लेकिन ईश्वर कह देखो जिसम ईश्वर इज अ सीड जिसमें से परब्रह्म बना है, तो ईश्वर परब्रह्म के पार होगा कि नहीं, परब्रह्म मतलब यूनिवर्स, परब्रह्म यानी पूरा ब्रह्मांड, तो ईश्वर परब्रह्म यानी ब्रह्मांड से पार, तो ब्रह्मांड से भी पार जो सत्ता है वो जो वन सिंगुलैरिटी का पॉइंट है, जो खाली डार्क एनर्जीज डार्क मैटर है, वो कौन है, ईश्वर। तो ये श्रीमद कौन है, वो कौन सी लक्ष्मी से भरे हैं जो ब्रह्म से पार है, यानी जो ईश्वरीय शक्ति है उसमें स्थित है, यूनाइटेड इन गॉड। अब हम उनके लिए चार चीज़ें कर सकते हैं, नंबर वन वदामी यानी उनकी बातें करते हैं, मेक श्योर ये वंदामी नहीं है, कोई इसको वंदामी ना बोले, वदामी हम बातें करते हैं उनकी, जब समागम में है तब तो ठीक है वो बोलते हैं हम सुन लेते हैं, लेकिन जब वो हम चले जाते हैं उसके बाद भी वी आर टॉकिंग अबाउट देम, मे बी मेंटली और वर्बली वॉट एवर। नमामी हमें बार बार उनकी बात याद आती है और नमस्कार हो जाता है, अरे वाह क्या बात करी, ये तो खाली तुम चित्रपट के सामने और नमस्कार कर रहे हो, ये तो अवलंबन वाला नमस्कार है, बिना अवलंबन के बस तुम्हें उनका विचार आए और तुम्हारा सिर झुक जाए, ऐसा नमामी। दूसरा इनके साथ चित्रमणता की बात चल रही है। तीसरा भजामी, भजामी यानी उनका भजन करते हैं यानी उनकी गुण स्तुति, सोच भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, दोनों चीज़ें। अगर कोई मिल जाता है ऐसा अपने जैसा ही, वो भी गुरु के प्रति इतना समर्पित है, तो गुणों की स्तुति भी करो, गुणों को शेयर करो। जैसे आप जाओगे यहाँ से तो आप लोगों से काफ़ी लोग पूछेंगे क्या था कैसा था, तो उन जो भी गुण दिखे आपको यहाँ गुरु तत्व के, उनकी उनको शेयर करना, ये भी आपका कर्तव्य बन जाता है। और कहा स्मरामी यानी स्मरण करते हैं, ठीक है बहुत रह लिया, एक महीना रह लिया, अब क्या स्मरण करेंगे उनका, नहीं, जितना ज़्यादा रहोगे ना उतना वो इंटेंस तुम्हारी मेमोरी का एक पार्ट फॉर्म करने लग जाते हैं। तो जब गुरु का समागम हो तब तो वो गुण देखने हैं, देख लिया ऊपर के 10th और 11th में बताए थे, अब गुरु का समागम नहीं है तो गुरु किस तरह से हमारे चित्त के अंदर मौजूद है, नंबर वन वदामी बातें करते हैं, नंबर टू नमामी बार बार मस्तक झुकता है, नंबर थ्री भजामी यानी उनके गुणों का बार बार ख्याल आता है, एंड नंबर फोर स्मरामी उनकी याद आती रहती है। तुम्हें लगेगा एक महीना रह के गए, अब एक महीना तो याद क्या करना प्रभु को, लेकिन तुम्हें अगले दिन से याद आएगी कि अरे शाम को प्रभु हम ये कर रहे होते, शाम को हम सुबह ऐसा कर रहे होते। सो इसका भावार्थ क्या बनता है, श्री सतगुरु को नमस्कार करने के पश्चात उनकी उपस्थिति हमारे संपूर्ण चित्त में व्यापक होती है, तभी संबंध स्थापित होता है। संबंध बनाना ना, तुम एक बार किसी के सामने आओ और झुक जाओ से थोड़ी संबंध बनेगा, संबंध कब बनता है जब पूरा दिन तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म में उनकी उनकी याद बनी रहे। तो कहते हैं कि ईश्वरीय लक्ष्मी से संपन्न सतगुरु की मैं बातें करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, उनके गुणगान करता हूँ और उन्हीं का स्मरण करता हूँ, इस प्रकार से मेरा उनके साथ का संयोजन कनेक्शन सदा बना रहता है। कितना प्यारा श्लोक है ना, कितने अच्छे से उसमें बताया कि किस तरह से कनेक्शन भी बनाना है। कितनी बार लोग पूछते हैं ना प्रभु कनेक्शन कैसे बने, लो यहाँ पर इसका आंसर है, स्मरण रहे। यह वदन नमन भजन और स्मरण कभी बोलकर होते हैं तो कभी मन में चलते रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि साधक शिष्य सदा ही गुरु की बातें करता रहे, और यह भी अनिवार्य है कि जब उचित समय आता है तब वह अवश्य ही गुरु के गुणों की महिमा भी करता है, मौन नहीं रहता। कोई आपको बोले कि क्या किया आपने, तो एकदम चुप्पी हो गए, ऐसा भी नहीं है। या तुम खाली नकुचिया ताल की लेक्स की बातें कर ली, वो भी अच्छी बात नहीं है। तुम यहाँ जिस प्रयोजन से रुके हो, उस प्रयोजन की तुम्हें बातें करनी होगी। ठीक है, ये समझ में आता है ट्वेल्थ? नेक्स्ट, अब यहाँ से 5 श्लोकों का ये गुच्छा चालू हो जाता है, जहाँ पर हम अपनी ट्यून भी चेंज करते हैं। तो ये खास जो अगले 5 श्लोक हैं, वो गुरु शिष्य के संबंध के जो विविध पहलू हैं, उनके बारे में इसमें बातें करी हैं। 13, 14, 15, 16, 17 श्लोक आते हैं। इस श्लोक के अंदर जैसा बताया ना कि 5 अलग अलग श्लोक हैं, और उसमें गुरु शिष्य रिलेशन के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हम लोग देखेंगे। इसके अंदर बताते हैं कि गुरु की कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं शिष्य के जीवन में। 3 इम्पॉर्टेंट जो भूमिकाएं हैं उसको इसके अंदर बता रहे हैं। पहला, गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु ब्रह्मा जैसे होते कुछ सर्जन करते हैं। गुरु विष्णु, गुरु विष्णु जैसे होते हैं कुछ संचालन करते हैं। गुरु देवो महेश्वरा, यानी गुरु महेश जैसे दिव्य होते हैं, संहनन की घटना भी होती है, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्मा, प्रत्यक्ष सद्गुरु प्रत्यक्ष परब्रह्म जैसे ही हैं, यानी ईश्वर जैसे ही हैं। तस्मै, यानी उन्हें, श्री गुरुवे नमः, यानी सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। क्या भाव बता रहे हैं इसके अंदर? साधक शिष्य के जीवन में सद्गुरु की 3 प्रमुख भूमिकाओं का यहाँ वर्णन है। सद्गुरु ब्रह्मा की तरह शिष्य के जीवन में स्व अनुभव की भूमिका सर्जन करते हैं, तत्पश्चात विष्णु की तरह उस भूमि का भरण पोषण करते हैं, और फिर महेश की तरह उस भूमि में बाधा पहुँचाने वाले भावों का संहनन यानी विनाश करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, और क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? क्या 3 चीज़ें बताई? स्व अनुभव हो सके ऐसी भूमि क्रिएट करते हैं, फिर भरण पोषण, बार बार सत्संग, भक्ति, ध्यान, समागम, मुद्रा, अलग अलग ढंग से। आजकल तो फोटोग्राफ्स, आज जो फोटो गई तो तुरंत ही आ गया कि भाई हमें भी रिकॉर्डिंग शेयर करो, क्योंकि दे आर मिसिंग इट। हमारा पॉडकास्ट कब बाहर आएगा, तो तुरंत ये, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हारी भूमि का पोषण करने के लिए डालते रहते हैं। और महेश क्यों है? तुम्हारी उस भूमि में बार बार कोई ना कोई बाधा पहुंचाने के लिए, कभी प्रमाद रूपी बैल आ जाता है, कभी क्रोध रूपी अजगर आ जाता है, कभी अहंकार रूपी कुछ आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है बार बार। तो बार बार सत्संग और अलग अलग समागम से उनको दूर हटाने के ढंग, संयम वगैरह के ढंग बताते रहते हैं। ऐसे श्री सदगुरु ईश्वर जैसे ही है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ईश्वर में से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार गुरु में भी यह 3 भूमिकाएं विद्यमान होती हैं, जो शिष्य को नित स्वरूप का अनुभव करने का निमित्त बनती है। ऐसे प्रत्यक्ष सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं, जो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर का स्पेलिंग टिक कर दो। बात विशेष भाव यहाँ लिखा है, इन 5 श्लोकों का पारायण करते हुए अपने प्रत्यक्ष सद्गुरु का स्मरण रहना चाहिए, अथवा उनके चित्रपट पर प्रेम भाव से एकाग्र होना चाहिए। विधि भी मैं हर जगह लिखती जा रही हूँ, तुम्हें ध्यान रहे। नेक्स्ट, 14th। बड़ा प्यारा श्लोक है, मैं लिख रही थी आज तो देखा कि इस श्लोक के अंदर गुरु से जो 4 आधार हमें मिले हैं उनकी बात है। क्या 4 आधार मिलते हैं? 4 सपोर्ट्स गुरु से हमें मिलते हैं। पहला सपोर्ट मिलता है ध्यान का, ठीक है। ध्यान मूलम सपोर्ट किस तरह से मिलता है? गुरु की मुद्रा, लिखा है गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम यानी ध्यान का आधार मिलता है गुरु की मुद्रा में। दूसरा, पूजा मूलम, पूजा का आधार मिलता है गुरु के पद पे, गुरु के मार्ग में। पूज्य भाव, पूजा का तुम्हारे लिए ये द्रव्य पूजा नहीं है कि तुम्हें मंदिर में जाके फूल चढ़ाने, तुम्हारे लिए भाव पूजा है कि पूज्य भाव तुम्हारा हमेशा मार्ग के लिए बना रहे। तीसरा मंत्र मूलम, यानी मंत्र का आधार मिलता है। मूल मत का मतलब होता है आधार, मंत्र मूलम मंत्र का आधार मिलता है किसमें? गुरु के वाक्य। निरंतर मंत्र की तरह दोहराते रहो, अलग 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 कितने वाक्य हैं तुम्हारे स्मरण में आए। और चौथा मोक्ष का आधार मिलता है गुरु की कृपा के रूप में। कितने अच्छे चारों इन्होंने आधार लिखे हैं। भावार्थ लिखा है, श्री सद्गुरु से शिष्य को प्राप्त चार आधारों में से प्रथम है गुरु की मुद्रा, जो शिष्य के ध्यान का आधार बनती है, स्मरण विधि ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। दूसरा गुरु द्वारा बताया हुआ मार्ग, जो शिष्य की पूजा का आधार बनते हैं, अर्थात शिष्य को उस मार्ग के लिए पूज्य भाव सदा रहता है। तुम खुद सोचो, इतने वर्षों में मार्ग के प्रति का भाव तुम्हारा कभी कम हुआ क्या? हम चल नहीं पाते वो बात अलग है, लेकिन मार्ग के प्रति की निष्ठा कि अरे यही करना है और यही सत्य है, ये कभी भी कम नहीं होगी। तो ये गुरु के जो पद होते हैं, गुरु के वचन है, मार्ग है, वो हमेशा हमारे मूल आधार बने रहते हैं। वह संसार भाव में नहीं उलझता। तीसरा गुरु के वाक्य मंत्र की तरह शिष्य के मन में चलते रहते हैं, जो शुभ भाव का आधार बनते हैं। यस, कोई ना कोई शुभ भाव का, क्रोध आ रहा है गुरु के वचन आ जाएंगे याद, मान आ रहा है गुरु के वचन याद आ जाएंगे, तो वो शुभ भाव का आधार बनते हैं। और चौथा, जो शिष्य उपरोक्त तीन आधार लेता है, कौन सा? मुद्रा का आधार, मार्ग का आधार और वाक्य का आधार, तीनों का आधार लेता है, उसको परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो गुरु कृपा पर ही आधारित होती है। क्योंकि सब कुछ तो उनसे मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो भी तो उसमें भी तो वो आएंगे। जब ए प्लस बी प्लस सी, तो जो डी है उसमें ए बी और सी तीनों ही तो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए उसको गुरु कृपा बोल दिया। आगे करते हैं। देखो, ऊपर में हर एक में विषय और संबंध लिखा है, यानी जो इससे पहले वाली गाथा थी उससे इसका रिलेशन क्या है और इस गाथा का टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है ग्रॉसली। तो ऊपर बताया कि ये चार आधार होते हैं। अब वो चार आधार, जब चार में से बेसिकली तीन आधार जब वो शिष्य लेता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन क्या आता है, वो इस गाथा में बताया। कैन यू कैच द एंटायर जर्नी? श्री सद्गुरु की निष्ठा में शिष्य को कैसा अनुभव होता है, उसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं और श्री सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। अखंड मंडलाकारम, संपूर्ण मंडल यानी ब्रह्मांड अखंड यानी संयुक्त है। शिष्य को गुरु के मार्ग पर चलते हुए इतना निश्चय होता है कि पूरा मंडल अखंड है। अखंड यानी संयुक्त है, यू कैन नॉट फ्रेगमेंटेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। तो मार्ग पर चलते हुए, वचन का स्मरण करते हुए, मुद्रा आदि को देखकर यह निश्चय होता है कि सब कुछ यहाँ कनेक्टेड है। व्याप्तम यानी व्यापक भी है, इतना छोटा नहीं है कि तुम इमीडिएटली कॉज एंड इफेक्ट निकाल सको, इतना व्यापक है इसलिए तुम कॉज इफेक्ट निकाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, फैला हुआ है। येन यानी जो, चराचरम यानी चर और अचर में, यानी जड़ और चेतन में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तत्पदम एक ही पद, ईश्वर। दर्शितम जो देखते हैं और दिखाते हैं। तस्मै उन्हें श्री गुरुवे नमः, श्री सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। क्या भाव बनता है? श्री सद्गुरु के ज्ञान और ध्यान निष्ठा में शिष्य को यह समझ और अनुभव में आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड संयुक्त है और इसके चर अचर सभी पदार्थों में एक ही पद यानी ईश्वर व्यापक है। इस प्रकार से जो स्वयं देखते हैं यानी गुरु देखते हैं, और दूसरों को दिखाते हैं यानी शिष्यों को दिखाते हैं, किस माध्यम से? ज्ञान और ध्यान के माध्यम से। ऐसे श्री सद्गुरु को हम भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है? पूरी जर्नी कितनी सुंदर है, गुरु से क्या मिलता है, कैसे कनेक्शन होता है। वे कल तक तो मैं पूरा ना इसका फ्लो चार्ट ही बना दूंगी, तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा कि ये पूरा किस तरह से फ्लो हो रही है जर्नी। 16th और 15th में बताया कि शिष्य को अखंड मंडल की समझ आती है। अखंड मंडल क्या बताया? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, कुछ भी यहाँ डिवाइडेड नहीं है, नथिंग इज फ्रेगमेंटेड। अब वो समझ में आने पर और ध्यान का, मुद्रा का, मार्ग का आधार तो लिया ही था पहले, तो फाइनली क्या होता है, शिष्य का अज्ञान जाता है। ये मैं स्टडी कर रही थी आज, तो गुरु गीता में ये श्लोक रिवर्स है। पहले अज्ञान तिमिरांधा में, उसके बाद नेक्स्ट अखंड मंडलाकार में, लेकिन जब यहाँ संकलन किया तो लघुराज स्वामी ने इसको उल्टा कर दिया है। एंड दिस ऑल्सो मेक सेंस, वो भी ठीक था, ये भी अच्छा है। यहाँ कह रहे हैं अनुभव होगा तो अज्ञान जाएगा, ये बात भी समझ में आती है। और एक होता है कि अज्ञान जाएगा तो अनुभव होगा, बट आई थिंक बिकॉज दिस इज नास्तिक दर्शन, इसलिए हम लोग अनुभव को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं कि पहले अनुभव हो तो उसके रिजल्ट में अज्ञान जाए, क्योंकि अज्ञान तो इतना स्कैटर्ड है ना, वो ऐसे नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अज्ञान जो है ना वो रात के जैसा है, तो रात्रि कब जाएगी? जब सूरज आएगा। अनुभव सूरज जैसा है, हमेशा हम अनुभव को सूरज के ऊपर देते हैं ना, तो क्या कह रहे हैं कि पहले अनुभव आएगा, यानी पहले सूर्य आएगा, अखंड मंडलाकारम आएगा, उसके बाद रात्रि जाएगी, अज्ञान जाएगा। और चूंकि आस्तिक दर्शन जब होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि पहले अज्ञान जा रहा है, डार्कनेस जा रही है, और डार्कनेस क्योंकि सब कुछ कृपा में मानते हैं, तो कृपा में डार्कनेस जाएगी तो उस कारण तुम्हें अनुभव होगा। दैट इज ऑल्सो वैलिड, लेकिन आई वॉज जस्ट रिलेटिंग इट कि ऊपर नीचे है श्लोक, उसमें ये पहले है ये बाद में है, एंड वन बाय वन ही है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। हाँ, गुरु गीता में 352 श्लोक है, आज मैं देख रही थी 352, और मैंने शायद कल बोल दिया था, नहीं मैंने पुराण कौन सा गरुड़ पुराण बोला था, लेकिन वो स्कंद पुराण में है। लेट्स मेक सम करेक्शंस। क्या कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधा नाम, अज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार यानी तिमिर, अंधे लोगों जैसा। अंधे लोगों का अंधकार कैसा हो गया, कुछ भी नहीं दिखेगा और खाली गैसेस होंगे, गैस। अंधा सोचना नहीं बंद करता, उल्टा हमसे भी ज़्यादा सोचता है वो, लेकिन गैस बहुत है, बहुत कल्पनाएं। ऐसे ही जब तक हमें अखंड मंडल की अनुभूति नहीं हुई तब तक हमारे अंदर भी कल्पनाएं कितनी होंगी, ऐसा अनुभव होता होगा, वैसा अनुभव होता होगा। लेकिन यह कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अंधे व्यक्ति की तरह उसका जो अनुभव का फेज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान उसका हट रहा है। और ज्ञानांजन शला क्या, ज्ञान रूपी अंजन की शला का, चक्षु में क्या डाला, अंजन, कहते हैं ना अंजन डालने से चक्षु की रोशनी बढ़ती है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तब उनकी आंखों में हम अंजन डालते हैं, ये संस्कृति में तो बहुत है, हाँ काजल, काजल जिसको आप बोलते हैं, काजल डालते हैं। ये तुम लोगों वाले काजल नहीं, ये जो कॉस्मेटिक काजल नहीं, वो प्रॉपर उसी टाइम तांबे के कटोरे के नीचे अग्नि जलाकर बनाया जाता है, तो तांबे का कटोरा होता है, अग्नि जलती है, ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसी काजल को लेकर लगा देते हैं, तो वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है हमारी। तो यहां कह रहे हैं कि गुरु भी हमारी आंखों की मतलब देखने की रोशनी बढ़ा रहे हैं। कैसे? शलाका के माध्यम से। शलाका यानी वेरियस टूल्स, जैसे अंजन लगाते हैं तो किसी एक वो स्टिक से लगाते हैं ना, हमें भी आजकल वो प्रभु ने अंजन दे रखा है, कमल प्रभु ने, तो उसके साथ एक स्टिक दे रखी है, तो वो स्टिक जो होती है उसको शलाका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं छोटी सी, कि अज्ञान किस तरह हटाते हैं गुरु हमारा, हमारे को ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं, और वो चक्षु को उघाड़ने के लिए या अंजन डालने के लिए कोई ना कोई विधियाँ देते हैं। सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रियाज, विधि। भक्ति की विधि कहो, सत्संग की विधि कहो, ध्यान की विधि कहो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान की विधि है, ठीक है। तो वो जब हमें देते हैं तो अचानक हमारा चक्षु खुलता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया, आज्ञा चक्र ओपन हो गया। तो आज्ञा चक्र ओपन हो गया तो अखंड मंडलाकार तुम्हें पूरा दिखाएगा, समझ में आ जाता है कि अरे ये सब कुछ तो एक ही चल रहा है। चक्षुरन मिलितम, चक्षु को खोलने वाले, चक्षु को देने वाले, येन यानी जो, तस्मै उन्हें, श्री गुरुवे नमः, श्री सतगुरु को नमस्कार। भावार्थ क्या बनता है? अखंड मंडल का अनुभव अर्थात ब्रह्मांडीय एक्यता का, वननेस का अनुभव होना। इसके पश्चात शिष्य के जन्मों जन्म का अज्ञान टूटता है, क्योंकि मैं अलग हूँ ऐसे अहंकार के भावों का विसर्जन होता है। और तभी तो उसके अंदर सबके प्रति करुणा आएगी ना, कंपैशन आएगी, मेरा ये हाथ मेरा ही है। तो अब उस हाथ को अगर दर्द हो रहा है तो मेरे को पिटी का भाव आएगा, कुछ करने का भाव आएगा। लेकिन जब तक मुझे पता ही ना हो कि हाथ मेरा ही है, तब तक कौन करेगा इसके लिए। तो यहाँ आते ही उसको सकल ब्रह्मांड, इट इज माई एक्सटेंशन, आई एम कनेक्टेड टू इट। तो इसलिए वो उनका दुख हटाने के लिए, उनका अज्ञान हटाने के लिए सद्गुरु तत्व हमेशा इतने सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि मैं अलग हूँ ऐसे अहंकार के भावों का विसर्जन होता है। इसी को कहते हैं कि शिष्य का अज्ञान रूप अंधकार, अंध अवस्था का नाश हुआ और ज्ञान रूपी अंजन को सद्गुरु ने शिष्य की आंखों में डाला। ये उपमा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अंजन लेके तुम्हारी आंखों में डालता है, लेकिन तुम्हारी जन्मों जन्म से जो मूढ़मति थी, जो सत्य को देख नहीं पा रही थी, उसको खोलने के लिए बार बार सत्संग, ध्यान, इन सब के माध्यम से उन्होंने तुम्हें अंजन दिया। यह ज्ञान अंजन अनेक प्रकार की विधियों, सत्संग, ध्यान, भक्ति आदि से सद्गुरु शिष्य में डालते हैं, जिससे उसके अंतर चक्षु उघड़ते हैं और स्व पर स्वरूप का यथार्थ अनुभव होता है। ऐसे सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारी प्रज्ञा चक्षु को खोलने के लिए अलग अलग विधियां देते रहते हैं। सो नाइस। 17th विषय और संबंध क्या है? जन्मों जन्म के अज्ञान को दूर करने वाले श्री सद्गुरु की कृपा से शिष्य के जीवन में किस प्रकार के परमार्थ साधन प्रकट होते हैं, उसे इस श्लोक में प्रस्तुत किया है। परमार्थ साधन, पूजा करता है वो ध्यान करता है, वो जाप करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, वो सारे साधन अब यहाँ पर बताए। और ये सारे परमार्थ साधन है, यानी भावना के स्तर पर चलते हैं। अगर वो व्यवहार साधन हो तो एक बार जाके करके लौट आओ, लेकिन परमार्थ साधन जो तुम्हारे हृदय में ही चलते रहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रूपी धूप मिलती है उसे, ध्यान धूपम, जिससे कर्म धुआं होते हैं। ध्यान के माध्यम से कर्म हमारे टूटते हैं, तो ध्यान रूपी धूप उसको मिलती है। मन पुष्प जैसा हो जाता है, उसका मन संवेदन शील बन जाता है, पुष्प की तरह कोमल हो जाता है। पंचेंद्रिय हुताशनम, क्या प्राप्त होता है? पांचों इंद्रियों से संसार को भोगने की वृत्ति का नाश होता है। सद्गुरु से हमें क्या मिलता है कि पांचों इंद्रियां तो है, लेकिन अब भोगने की इच्छा ही नहीं रही। जो तुम उस दिन भी कह रहे थे और आज भी तुमने लिखा, वो इच्छा ही नहीं रहती। तो ऐसा पंचेंद्रिय हुताशनम, उस पर जो भूत चढ़ा था ना, वो उतार देते हैं। पांच इंद्रियों पर संसार को भोगने का भूत चढ़ा था, उसको उतार दिया। क्षमा जाप, उसके भीतर जाप चलता है किसका? कोई मंत्र नहीं चलता, आप क्षमा का। क्षमा का जाप क्यों चलता है? सब कुछ एक ही है ऐसा मान लो, या मेरी ही फाइल से वापस आ रही है, या सामने वाले को बेचारे को समझ नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, उसको स्वरूप का भान नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। सो ही हैज ऑल द थॉट्स कि जिनको वो कंपाइल करके किसी भी तरह से उसकी इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्षमा आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी इक्वेशन में कुछ भी तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो या वॉट एवर, कोऑर्डिनेट्स नहीं, एलजेब्रा में क्या होते हैं, वेरिएबल्स। लेफ्ट साइड में कोई भी वेरिएबल्स हो, लेकिन राइट साइड में आंसर उसको क्या चाहिए? ऑलवेज क्षमा। ये मैं अपने जीवन में बहुत करती थी कि कुछ भी ऐसा सोचना है जिसका आंसर ये आ जाए, लेट गो, छोड़ना, बस सोचना क्या है मुझे नहीं पता, मतलब उसने सच में ऐसा किया नहीं किया इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, हो सकता उसने जान मुझ कर ही मेरे पैर पर पैर मारा, लेकिन मुझे ऐसा सोचना है कि जिससे मेरा इक्विवेलेंट आंसर क्या है, क्षमा, छोड़ना, लेट गो कर, उसने जान मुझ कर मारा पर मैं क्या सोचूंगी, भूल से मार दिया तभी तो ऐसा हुआ है ना, हो सकता है मुझे दिखे कि नहीं जान मुझ कर ही मारा उसने, भूल से भी नहीं मारा, तब मुझे क्या सोचना है, अरे मैंने भी तो ऐसे ही मारा था किसी को, वही तो लौट कर आया है। सो फाइनली मेरा इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमेशा क्षमा, फॉरगिवनेस, सबक सिखा दूंगी, ये कर दूंगी, ये भी भूत बहुत थे पहले मेरे अंदर। ओके, उसे क्या मिलता है, ध्यान रूपी धूप मिलती है। धूप क्यों कहा है ध्यान को, क्योंकि ध्यान में सबसे ज़्यादा कर्मों के बंधन हमारे टूटते हैं। द मोमेंट वी स्लिप इनटू अवर थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प समाधि, उसी समय से टन्स एंड टन्स ऑफ कर्म हमारे वहीं पर ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए ध्यान को धूप कहा। मन कैसा, पुष्प की तरह कोमल संवेदनशील, पंचेंद्रिय का नशा जो होता है, भोगने का नशा नष्ट हो जाता है, नाशनम, नाश होता है। भीतर में हृदय में क्या चलता है, क्षमा का जाप, संतोष उसकी पूजा होती है, यानी उसको संतोष ही पूज्य होता है। पूजा का लिटरल मीनिंग नहीं लेना यहाँ पर कि वो ऐसी इस तरह से पूजा करता है, नहीं, पूज्य भाव उसके अंदर हमेशा, कंटेंटमेंट इज पूज्य, कंटेंटमेंट इज आइडियल टू दैट पर्सन, आदर्श है उसका, संतोष उसका आदर्श बन जाता है। पूज्यो यानी पूजा करते हैं, देवो यानी ऐसे देव अर्थात ईश्वर अथवा निज आत्मा, आस्तिक दर्शन से लोगे तो ईश्वर, नास्तिक दर्शन से लोगे तो अपना आत्मा। निरंजन यानी जो आंखों से नहीं दिखते। भावार्थ क्या बनता है, शिष्य के जीवन में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमार्थ साधन और गुण खिलते हैं। ध्यान की विधि में प्रवेश करके वह सत्तागत कर्मों को नष्ट करता है, जिससे उसे स्वरूप एकता का अनुभव प्रगाढ़ होता है। जितने जितने कर्म की लेयर्स हटेगी, उतना उतना उसे कनेक्शन की भावनाएं और दृढ़ होगी। इसके परिणाम स्वरूप उसका मन संवेदनशील होता है और पांचों इंद्रियों से संसार को भोगने की वृत्ति का नाश होता है। उसके जीवन में सतत दूसरों और स्वयं के प्रति क्षमा का भाव होता है, अर्थात वह किसी को भी दोषी नहीं देखता। संतोष उसे प्रिय होता है और वह ईश्वर आस्तिक दर्शन से या निज आत्मदेव नास्तिक दर्शन से की ही पूजा करता है, अर्थात उन्हें ही पूज्य मानता है। इस तरह ये पांच श्लोकों का गुच्छा खत्म होता है। यहाँ तक मेनली